السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کلاس میں آسانی پیدا کرے. یہاں پہ بارش کی وجہ سے تھوڑا انٹرنیٹ کا میرا آج کافی ٹائم سے تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے, اس وجہ سے میں ٹرائی کرتی ہوں, اگر یہ چلتا رہا تو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس پوری کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم دیکھ رہے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے آپ کو استعاذہ پڑھنا ضروری ہے, جس کا حکم ہمیں قرآن پاک میں ہی سورۃ النحل آیہ 98 میں ملتا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اپنی تلاوت کا آغاز کسی بھی سورہ کی بگننگ سے کرے ہیں تو بسم اللہ کو پڑھنا بھی ضروری ہے. یہ ایکچولی ایک ٹرم ہوتی ہے بسم اللہ, جس کو ہم پڑھتے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شارٹ فارم آف بسم اللہ. لیکن اس کا نام جو ہے وہ ہے بسم اللہ, با سین میم لام اور گولتا. یہ ایکچولی عربز کا ایک قاعدہ ہوا کرتا تھا کہ وہ کسی بھی لمبے سینٹینس کو نا شارٹ فارم میں بولا کرتے تھے. جیسے وہ کہتے تھے قل بسم اللہ, یعنی اگر انہیں کسی کو کہنا ہے کہ آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اتنا بڑا سینٹینس پڑھنے کی بجائے وہ کیا کہتے تھے, قل بسم اللہ. یعنی آپ بسم اللہ کے اندر وہ سارا مفہوم آ گیا. جس طرح سے وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ, اتنے سینٹینس کو وہ کہتے ہیں حوقلا. تو اگر انہوں نے کسی کو ریکمینڈ کرنا ہے کہ آپ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ, تو وہ کہیں گے قل حوقلا. تو اس طرح سے انہوں نے سینٹینسز کے نام رکھے ہوئے تھے, جس سے کہ ان کو بولنے میں ذرا آسانی ہو جاتی تھی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی جو شارٹ ایبریویشن ہے وہ بسم اللہ تھا, بسم اللہ ہے. اور آپ اس کو کسی بھی سورہ کے آغاز سے پہلے پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے, سوائے التوبہ کے, جس میں ہم نے دیکھا کہ اسکالرز کی دو اوپینینز ہیں. بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ اس لیے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ پارٹ آف سورہ ہے, یعنی سورہ کا حصہ ہے کہ سورہ کی آیہ نمبر 1 وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. بعض اسکالرز اس کو آیہ نمبر 1 نہیں کنسیڈر کرتے, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ کے آغاز میں اس کو پڑھا جانا چاہیے. یعنی ایک جیسے کسی بھی چیز کے آغاز کو کرنے کا ایک احترام ہے نا, تو احتراماً ہم اس کو پڑھے ہیں. تو یہ تو اسکالرز کی ڈسکشن ہے, مگر ہمیں اس چیز سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورہ ہم شروع نہیں کر سکتے سوائے التوبہ کے. سورہ التوبہ ایک واحد ایسی سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ نازل نہیں ہوئی, باقی تمام سورہ سے پہلے بسم اللہ نازل ہوئی ہے. تو التوبہ سے پہلے اگر آپ سورۃ التوبہ سے اپنی قرآن پاک کی ریڈنگ کا آغاز کریں ہیں تو آپ صرف استعاذہ پڑھیں گے اور سورۃ التوبہ کو شروع کر دیں گے, آپ بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, چاہے آپ آغاز کریں ہیں اور چاہے آپ پیچھے سے آ رہے ہیں اور سورۃ الانفال ختم کر کے سورۃ التوبہ کو شروع کر رہے ہیں. اس میں اس کی وجہ جو ہے وہ اصل وجہ کیا ہے بسم اللہ نہ نازل ہونے کی, وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن اگین ہمارے پاس اسکالرز کی اوپینینز آتی ہیں کہ اس میں بسم اللہ کیوں نازل نہیں ہوئی. جیسے امام شاطبی کی ہمارے پاس اوپینین آتی ہے کہ وَمَهْمَا تَصِلْهَا أَوْ بَدَأْتَ بَرَاءَةً لِتَنزِيلِهَا بِالسَّيْفِ لَسْتَ مُبَسْمِلًا, کہ چاہے آپ تَصِلْهَا أَوْ بَدَأْتَ, چاہے آپ ملا رہے ہوں سورۃ التوبہ کو, یعنی سورۃ الانفال ختم کی ہے اور التوبہ سٹارٹ کی ہے, یا آپ سورۃ التوبہ سے ہی اپنی تلاوت کا آغاز کریں ہیں, چونکہ یہ سورہ سیف تلواروں کے ساتھ نازل ہوئی ہے اس وجہ سے ہم اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے. تو یہ تو ہمیں ایک اوپینین ملتی ہے امام شاطبی کی. پھر اسی طرح سے کچھ اور اسکالرس کا یہ خیال ہے کہ ہر چیپٹر ایک نیا حکم اپنے اندر رکھتا ہے, ایک نیا سبجیکٹ, ایک نیا انداز, ایک نیا حکم, ایک نیا سٹائل. لیکن جو الانفال اور التوبہ ہیں یہ دونوں سورز آپس میں اتنی زیادہ ملتی ہیں کہ وہ ان کو ایک الگ چیپٹر کنسیڈر کرنے کی بجائے وہ اس کو چیپٹر پارٹ 1 اور چیپٹر پارٹ 2 ہیں. ठीक है, यानी वो ये कहते हैं कि अलनफाल एक ही टॉपिक चूंकि कंटिन्यू हो रहा है, और आपको पता है वॉर का ही टॉपिक जो है वो कंटिन्यू हो रहा है इन दोनों सूरज में, तो सूरतुल अनफाल जो है उसी का टॉपिक आगे कंटिन्यू है। तो पार्ट वन और पार्ट टू से वो इसको समझते हैं कि इस वजह से एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक चूंके शुरू नहीं हुआ, इस वजह से बसमला नाजिल नहीं हुई। तो खैर ये तो ओपिनियंस हैं स्कॉलर्स की, मगर असल हिकमत क्या है या असल वजह क्या है कि हमें सिखाया नहीं गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह से पहले बसमला नहीं पढ़ी, ना हमें सिखाई, ना हमें मुतसल रिवायात के साथ ये मिलती है, इस वजह से हम अत्तौबा को जब भी शुरू करते हैं हम इसको बगैर बसमल्ला के ही शुरू करते हैं। फिर इसी तरह से आप देखें कि जब आप कुरान पाक की तिलावत का आगाज करते हैं तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई ना, अगर सूरह से स्टार्ट ले रहे हैं तो इस्तआदा भी पढ़ेंगे, बसमल्ला भी पढ़ेंगे और आयत नंबर वन भी पढ़ेंगे, सही। अब इसको पढ़ने का जो तरीका है यानी इस्तआदा, बसमल्ला और आयत नंबर वन, इसमें ये होता है कि असल में आप ना मुख्तलिफ तरीकों के साथ स्टार्ट ले सकते हैं, और हमारे पास फोर पॉसिबल तरीके हैं किसी भी सूरा को आगाज करने के। सूरा के आगाज के लिए हमारे पास चार मुमकिन तरीके आते हैं। मुमकिन तरीके कौन से हैं कि जैसे आप इस्तादा पढ़ें, ठीक है, इस्तादा, बसमला, और आपको पता है आयत को पढ़ना जरूरी है सूरत के आगाज से पहले। तो हम चार मुमकिन तरीकों में क्या क्या करते हैं, सबसे पहले ये कि कतउल कुल, पहले तरीके का नाम है जिसे हम कहते हैं कतउल कुल, कौफ दो आइन और अल कुल। कतर का मतलब होता है तोड़ देना। तो इस तरीके के अंदर हम क्या करते हैं, इस्तादा पढ़ते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं यानी सांस लेते हैं, वक्फ करते हैं, फिर बसमल्ला पढ़ते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, सांस लेते हैं, और फिर हम सूरह का आगाज करते हैं। तो हम ये कैसे पढ़ेंगे, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, सही। तो आप देखें कि आप तीनों चीजों को ब्रेक करके पढ़ते हैं, ये वो तरीका है जिसको हम अमूमन अपनी रीडिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुरान पाक की जब हम रीडिंग करते हैं तो हम कतउल कुल ही से अपनी रीडिंग को पढ़े होते हैं कि आप इस्तआजा पढ़ते हैं, फिर पॉज लेते हैं, फिर आप बसमला पढ़ते हैं, फिर आप पॉज लेते हैं, फिर आप सूरह को कंटिन्यू करते हैं। दूसरा जो तरीका है उसे हम कहते हैं वसलुल कुल। वसल का मतलब होता है मिला देना, अलकुल मतलब सबको, तीनों को मिला के पढ़ते हैं। इसके अंदर आप क्या करते हैं, इस्तआजा पढ़ते हैं और वक्फ करने के बजाय उसको बसमला के साथ मिला देते हैं, और बसमला के बाद भी वक्फ करने के बजाय उसे सूरत के साथ मिला देते हैं। जब हम वक्फ नहीं करेंगे तो इसका तरीका क्या, इसका तरीका कार ये होगा कि जो लास्ट, जैसे अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जो लास्ट लेटर है मीम, इसको साकिन पढ़ने के बजाय इसको इसकी अपनी असल हरका के साथ पढ़ेंगे यानी कसरा के साथ, और फिर आप बसमल्ला शुरू करेंगे, बसमल्ला को पढ़ेंगे। अब बसमल्ला में भी लास्ट लेटर मीम आ रहा है, इसको भी इसकी असल कसरा के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आपने इनकी कसरज नहीं हटानी, ये कसरज हम सिर्फ तब हटाते हैं जब हम वक्फ करते हैं, उस लेटर को साकिन कर देते हैं। जब आप साकिन नहीं कर रहे तो आप कसरा नहीं हटाएंगे और आप इसे कंटिन्यू करके पढ़ेंगे। कैसे, अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा मिनश शैतानिर रजीमी और फिर आगे आपने बसमल्ला को शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिर्फ और सिर्फ तब पढ़ा जाता है जब आप उस वर्ड, यानी जब आप उस वर्ड को पढ़े हैं तब आप उस हमजा को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर आप उस हमजा को इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी फिर हम इसको लाम के साथ मिला लेते हैं, यानी हम इसको हमजा को ड्रॉप कर देते हैं और इसको लाम के साथ ज्वाइन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल आलमीन। तो कुरान पाक में जितनी भी सूरज इस हेल्पर हमजा से शुरू होती हैं, उस हेल्पर हमजा को जब भी आप पीछे वाले लफ्ज के साथ मिलाएंगे, आप इस हमजा को डिलीट कर देंगे और आप नेक्स्ट लेटर से जाके डायरेक्ट उस लेटर को जाके ज्वाइन करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप बसमल्ला को देखें ना, तो बसमल्ला में फोर वर्ड्स हैं। बिस्म, सबसे पहला वर्ड क्या है? बिस्मी। दूसरा वर्ड क्या है? अल्लाह। अब आप जब अकेला पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? अल्लाह, ये हमजा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीसरा वर्ड क्या है? अर्रहमान। अब आप जब थर्ड वर्ड पढ़ते हैं तो आप हमजा इस्तेमाल करते हैं। या फोर्थ वर्ड क्या है? अर्रहीम। अब भी आप हमजा इस्तेमाल करें, मगर जब आप मिलाते हैं तो आप क्या करते हैं? इन जो अल्लाह से पहले हमजा आ रहा है वो भी नहीं पढ़ते, अर्रहमान से पहले जो हमजा आ रहा है वो भी नहीं पढ़ते, और अर्रहीम से पहले जो हमजा आ रहा है वो भी नहीं पढ़ते। तो हम इसको मिला के कैसे पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो आपने हमजेस डिलीट किए, सेम थिंग आप यहाँ पे करें, क्योंकि बहुत औकात ऐसा होता है कि जब वसल किया जाता है तो स्टूडेंट्स हमजा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमजा को अब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे वसलुल कुल में करेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल आलमीन, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, अगर कुरान पाक में जो सूरतुल अलक है वो स्टार्ट हो रही है, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अब ये जो इक़्रा है ना, ये हमजा भी हेल्पर हमजा है, ये भी तभी पढ़ा जाएगा जब हम इक़्रा पढ़ेंगे, यानी इस वर्ड को पढ़ेंगे। अगर हम इस वर्ड को नहीं पढ़े तो ये हमजा, यानी पीछे से अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमजा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर अगर इसको, इस सूरा को हम, जैसे फॉर एग्जांपल हम सूरतुल अलक से अपनी रीडिंग शुरू करें हैं, इस्तआदा पढ़ें, बसमल्ला पढ़ें, और जब आप इस वर्ड को पढ़ेंगे तो बसमल्ला के साथ ही कौफ को ज्वाइन करेंगे। कैसे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़्रा। यानी आप इसको उसी के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे और हमजा, इसका अपना हमजा डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तरीका है वसलुल कुल का, कि तीनों आयात को मिलाकर पढ़ें। आपने मुख्तलिफ कुरा को जब सुना होगा तो बहुत सारे कुरा वसलुल कुल के तरीके के साथ अपनी रीडिंग का आगाज कर रहे होते हैं। थर्ड तरीका हमारे पास जो आता है वो है वसलुल इस्तआदा मअल बसमल्ला, यानी इस्तआदा का वसल बसमल्ला के साथ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस्तआदा पढ़ते हैं, फिर उसको बसमल्ला के साथ ज्वाइन कर देते हैं और पॉज लेते हैं, फिर वक्फ करते हैं और फिर सूरा को स्टार्ट करते हैं। कैसे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है। इस तरह से कि आपने सिर्फ इस्तआदा और बसमल्ला को ज्वाइन किया, कुल नहीं किया, कुल का वसल नहीं किया, बल्कि सिर्फ इस्तआदा और बसमल्ला का वसल किया, फिर वक्फ किया और फिर आपने अगली आयत को पढ़ा, ठीक है। फिर इसमें जो फोर्थ आपके पास मुमकिन तरीका है वो क्या आता है कि इस्तआदा को पढ़कर वक्फ करें और बसमल्ला को और सूरा को मिला दें। कैसे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सही। तो अगर इसको हम थोड़ा सा आसान करके देखें ना, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि तीन चीजें हैं आपके पास। नंबर दे दें, 1, 2, 3, यानी इस्तआदा 1, बसमल्ला 2, और जो सूरा की पहली आयत है वो 3 होगी। ये तीन चीजें हैं आपके पास, तीनों को मिला लीजिए, तीनों को मिला लीजिए, या तीनों को कता कर दें। तीनों को कता करेंगे तो कौन सा तरीका बन जाएगा? कतुल कुल। तीनों को मिला लेंगे तो कौन सा तरीका बन जाएगा? वसलुल कुल। फर्स्ट टू को मिला लीजिए या लास्ट टू को मिला लीजिए? फर्स्ट टू को मिला लीजिए, यानी इस्तआदा और बसमल्ला को मिला लीजिए, तो ये तरीका आपके पास बन जाएगा वसलुल इस्तआदा मअल बसमल्ला, और लास्ट टू को मिला लीजिए तो ये तरीका आपके पास बन जाएगा वसलुल बसमल्ला मअ सूरा। वसलुल बसमल्ला मअ सूरा, यानी बसमल्ला को आपने सूरा के साथ मिला लिया, तो ये थोड़ा सा आसान तरीका है याद रखने का, तीनों को मिला ले या तीनों को कता कर दे, या फर्स्ट टू को मिला ले और या फिर लास्ट टू को मिला ले, ठीक है। तो ये चार मुमकिन तरीके हैं कुरान पाक की तिलावत को शुरू करने के। इसी तरह से आप जब अतौबा की तिलावत शुरू करते हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट है इसलिए हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जब हम अतौबा की तिलावत शुरू करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इस्तआदा पढ़ेंगे और सूरा पढ़ेंगे, तो आप उसको कता भी कर सकते हैं और वसल भी कर सकते हैं, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिह, ठीक है। और वसल कैसे करेंगे, फिर वसल करने में फिर आप अशैतानिर रजीम के ऊपर रुकने की बजाय अशैतानिर रजीमी बराअ, यानी आगे फिर इसको इस तरह से लेकर चलेंगे, यानी मीम की हरकत को अदा करेंगे, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट जो कि मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि अमूमन जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो बाज़ुकात नमाज के अंदर ये ख्याल नहीं रखा जाता, या बाज़ुकात जो लोग बहुत तेज तिलावत करते हैं उसके अंदर इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता, तो वो कैसे तिलावत करते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यूं करके। तो ये जो तरीका है ये बहुत दुरुस्त नहीं है, हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम इसको ऐसे पढ़ें, क्योंकि आप देखें कि ये जो है ना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मीम को साकिन करना, ये सिर्फ उस वक्त जायज है जब आप वक्फ कर रहे हैं, और वक्फ का मतलब है पॉज प्लस ब्रीदिंग, यानी आप स्टॉप करते हैं, अपनी आवाज को तोड़ते हैं प्लस आप सांस लेते हैं। अगर इन दोनों में से एक भी चीज मिस है ना तो आपका वक्फ प्रॉपर नहीं हुआ, सही। तो उसमें फिर ये होता है कि आप अगर इसको इस तरह से पढ़े हैं तो ये वक्फ के अंदर शामिल नहीं होता। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो सांस लें, और अगर आप तेज पढ़ रहे हैं और आप यहाँ पर नहीं रुकना चाहते तो इंस्टेड सेइंग कि आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हैं, आप वसल करें, सबका वसल करके पढ़ें, वसलुल कुल करके पढ़ें, ताकि आपकी जो स्पीड है उस पर भी इफेक्ट ना हो और आपकी जो तिलावत है वो भी दुरुस्त हो। यानी आप फिर इसको कैसे पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, यानी आप मिलाते जाएं आयात को, और अगर आप वक्फ करना चाहते हैं फिर प्रॉपर वक्फ करें, अर रजीम कह के बगैर सांस लिए आगे ना चले, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ओके, अब हम आ जाते हैं, ये तो हमारा जो डिस्कशन थी वो इस चीज की कि आप तिलावत को कैसे शुरू करें। अब हम ये देखते हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज टाइप कर दीजिए, मैं साथ में आंसर भी कर दूंगी। अब हम ये देखते हैं कि अगर पढ़ते पढ़ते, जैसे आपने तिलावत शुरू की है, शुरू तो कर ली, आपको पता था किस तरह से करनी है, चार में से एक तरीका लिया और आपने उसके जरिए इसको शुरू कर दिया। अब तिलावत करते करते ऐसा होता है कि एक सूरा खत्म हो जाती है और दूसरी सूरा शुरू हो जाती है। अगर कभी ऐसा हो कि तिलावत करते करते आपकी एक सूरा खत्म हो गई है और दूसरी सूरा आपने शुरू कर दी है, किस तरीके से या कितने मुमकिन तरीके हैं कि आप उन दो सूरास को ज्वाइन करें, ठीक है। इसमें फिर हमारे पास ये आ जाता है, जैसे हमने देखा ना कि बसमल्ला को पढ़ना जरूरी है, बसमल्ला को पढ़ना जरूरी है, तो आपने एक सूरा खत्म की, बीच में बसमल्ला पढ़ी और फिर दूसरी सूरा का आगाज किया। ये ज्यादातर आपको मिलता है 38 जुज में, हम वहीं से एक दो एग्जांपल्स भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सूरतुल फलक पढ़े थे और वो हमने खत्म की, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब हमने सूरतुल नास शुरू की तो हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब क्या पढ़ेंगे, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। आपने सूरा को, नेक्स्ट सूरा को शुरू कर दिया। अब इन दो सूरस को वसल करने के भी आपके पास चार मुमकिन तरीके हैं, मगर उनमें से तीन जायज हैं, एक गैर जायज है, एक तरीके से आप नहीं पढ़ सकते। मुमकिन तरीके कैसे हैं, ये मुमकिन तरीके का मतलब आप जरूर समझ रहे होंगे, पॉसिबल ऑप्शंस, आपके पास पॉसिबल तरीके ही इतने बन रहे हैं। जैसे वो हमने साजा बसमला में देखा ना, तीनों को मिलाएं या तीनों को ब्रेक करें, फर्स्ट टू को मिलाएं या लास्ट टू को मिलाएं, देयर इज नथिंग एल्स, आपके पास कोई और तरीका बनता ही नहीं है। तो चारों बनते हैं और चारों ही अलाउ हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी आपके पास तीन चीजें आती हैं। तीन कौन सी हैं? नंबर्स हम उसी तरह से देंगे, सिर्फ आपके माइंड में, बैक ऑफ माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि वो तीन हैं क्या। इस्तआजा बसमल्ला में फर्स्ट इस्तआजा था, सेकंड बसमल्ला और फिर थर्ड आया। यहां पर क्या है, पहली पहली जो चीज आपके पास आ रही है वो लास्ट आया ऑफ फर्स्ट सूरा, जो सूरा आप पढ़े हैं उसकी आखिरी आयत। तो हम फलक पढ़े थे, उसकी आखिरी आयत क्या है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये पहला आपके पास हो गया, फर्स्ट नंबर आप इसको लगा दें। सेकंड आपके पास क्या आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बसमला सेकंड आ गया आपके पास। थर्ड आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट आया ऑफ नेक्स्ट सूरा, ठीक है, जैसे कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई, तीन चीजें आ गई। अब आपके पास मुमकिन कौन कौन से तरीके बन रहे हैं, वही नंबर वन कतुल कुल, ये जायज है कि आप पहली आयत को खत्म करें, सांस लें, बसमल्लाह पढ़ें, खत्म करें, सांस लें और नेक्स्ट सूरा को शुरू कर दें। जैसे मैंने अभी पढ़ के भी दिखाया था, कतुल कुल ही से पढ़ा, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है। फिर जो आपके पास सेकंड आ जाती है वो है तीनों को मिला लें, वस्लुल कुल, ये भी जायज है। वस्लुल कुल में हम कैसे पढ़ते हैं, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है। अब आपने हसद नहीं पढ़ा, अब आपने हरका को पढ़ना है, हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, आपने हरका कहीं पे भी मिस नहीं करनी। क्यों? इसलिए कि अब हम वसल करें, अब हम वक्फ नहीं करें। आप में से बहुत सारे लोगों ने ना, जैसे जो बिगिनर्स होते हैं वो सवाल भी ये करते हैं कि हमें ना बाज़ोकात सूरह के आखिर में मीम नजर आता है। अब जब मीम नजर आता है तो हम उसको क्या पढ़ें? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, आपको बहुत सारी सूरज के आखिर में ना मीम नजर आएगा। जैसे हम इखलास को ले लेते हैं, सूरतुल इखलास की आखिरी आयत है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस अहद की तनवीन बमतान जो ऊपर आ रहे हैं, इसके बाद क्या हम इसको अहद पढ़ें या अहदुम पढ़ें, या इस ये मीम किस चीज को इंडिकेट करता है? असलुल कुल कर रहे होते ना, यानी अगर आप इस बसमल्ला को अगली आयत से मिलाते हैं, फिर हम इस मीम को इस्तेमाल करते हैं। और मीम को क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि तनवीन के बाद आपके पास हर्फ बा आ रहा है, तो जब तनवीन के बाद आपके पास लेटर बा आता है, तो माशाल्लाह आप लोग काफी तजवीद को जानते होंगे, आपको पता है हम जो तनवीन का नून है उसको मीम में कन्वर्ट कर देते हैं। आप इस बात से फेमिलियर हैं पहले से? जी बिल्कुल, जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम इख्तलाफ कहते हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो इस रूल को नहीं जानता, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप साथ में एक नोट लिख लीजिए कि अगर तनवीन हो, किसी भी तरह की तनवीन, फतहतान, कसरतान, बमतान, प्लस उसके बाद बा आ जाए, तो फिर तनवीन दुन नून पढ़ने की बजाय आप दुम मीम पढ़ते हैं, यानी नून मीम के अंदर चेंज हो जाता है। और ये कायदा इतना आसान है कि हम इसको उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में भी जैसे आप बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे उर्दू में हम नबी का प्लूरल अंबिया ही इस्तेमाल करते हैं, हालांकि आप जानते हैं आप इसको नून के साथ लिखते हैं, अनबिया लिखते हैं, मगर आप क्या बोलते हैं, अंबिया, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के हैं जिसमें आप नून लिखते हैं मगर आप प्रोनाउंस क्या करते हैं, मीम करते हैं। ये असल में यही कायदा है। जी बिल्कुल, अन बर आप लिखते हैं नून के साथ, और आप उसे कैसे बोलते हैं, अंबर, आइन नून बार, और अब उसे कैसे बोलते हैं, अनबर लिख के अंबर बोलते हैं। मीम के साथ लिखा नहीं जाता लेकिन मीम के साथ पढ़ा जाता है। तो ये असल में ये इकलाब ही की वजह से होता है, यही रूल है। इसको आप जनरली अभी बस इतना याद रखने कि तनवीन के बाद बा जाए तो नून मीम में बदल जाता है, तनवीन के अंदर एक ऑडिबल नून होता है ना, वो मीम के अंदर बदल जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हुए कैसे पढ़ेंगे, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सूरतुल इखलास पढ़ी थी और मैंने खत्म की और फलक, और अब मैं अगर इसको वसलुल कुल करती हूँ तो कैसे करूंगी, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊजु बिरब्बिल फलक, ठीक है। और इसी तरह से सूरतुल मसद की जो एंडिंग है वो भी यही है, फी जीदिहा हब्लु मिन मसदिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है। ये वसलुल कुल है, और वसलुल कुल में फिर अगर आपके पास तनवीन है बसमल्ला से पहले तो फिर आप उसको इस मीम के साथ पढ़ लें, ठीक है। ये तो दो तरीके हो गए जो जायज हो गए, एक कतुल कुल हमने देख लिया कि आए लास्ट आया को बसमल्ला से अलग करें, बसमल्ला को नेक्स्ट आया से अलग करें और तीनों को अलग अलग करके पढ़े। दूसरा तरीका था वसलुल कुल जिसमें आप बगैर सांस लिए तीनों को इकट्ठा पढ़े हैं। थर्ड आपके पास जो तरीका आ जाता है वो है जो पॉसिबल जो जायज है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट दो जायज थे। जो थर्ड आपके पास जायज तरीका आ जाता है ये है कि आप सूरा को खत्म कर लें, यानी आप जो सूरा पढ़े हैं उस सूरा को खत्म करें, सूरा को खत्म करने के बाद आप सांस ले लें, और सांस लेने के बाद आपने क्या करना है, बसमला और अगली सूरा को ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये आपने तीन चीजें करनी है। क्या वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, सूरा को खत्म किया और आपने सांस ले लिया, अब बसमल्ला के साथ अगली सूरा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इसको हम कहते हैं वसलुल बसमला मा सूरा के लास्ट टू को ज्वाइन किया। जो हमने नंबरिंग से देखा था ना, फर्स्ट थ्री को ब्रेक किया, तीनों को मिलाया, लास्ट टू को मिलाया। लास्ट टू को मिलाना जायज है जब आप सूरज की कंटिन्यूएशन कर रहे होते हैं, लेकिन आप फर्स्ट टू को नहीं मिला सकते। फर्स्ट टू को मिलाना गैर जायज है, यानी आप सूरज को पढ़े हैं और सूरज को पढ़ते पढ़ते बगैर पॉज लिया आपने बसमल्लाह को पढ़ा, और बसमल्लाह पढ़ने के बाद आपने वक्फ कर दिया, और वक्फ करने के बाद आपने अगली सूरत को शुरू कर दिया, ये तरीका गैर जायज है। ये मैं आपको ब्रेक करके मैं पढ़ के बताऊंगी ताकि आपको एक आइडिया हो कि किस तरह से नहीं पढ़ सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सूरत अल-इखलास पढ़े हैं और फिर फलक शुरू करते हैं तो ये कैसे होगा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाह, यानी बगैर वक्फ किए आप आगे चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ के यहाँ पे वक्फ कर दें और फिर आप पढ़ें कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, सही। तो ये जो तरीका है ये गैर जायज है। अच्छा, ये गैर जायज क्यों है, इसकी एक हिकमत है। इसकी हिकमत ये है कि आप देखें कि जो बसमला है, जैसे हमने अभी बिगिनिंग में देखा कि बसमला सूरा के आगाज में मौजूद है, कि जब आप सूरा को स्टार्ट करते ना तो उसके आगाज में मौजूद है। चाहे स्कॉलर्स की ओपिनियन ये हो कि ये आय नंबर वन है, चाहे स्कॉलर्स की ओपिनियन ये हो कि ये यानी एहतरामन एक आप पढ़े हैं सूरा से पहले, आप एक एडिशनल चीज पढ़े हैं, लेकिन आप बसमल्ला को पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी आप बसमल्ला के बगैर सूरा को स्टार्ट नहीं करें, तो सब इस चीज के ऊपर एग्री हैं कि बसमल्ला सूरा से पहले ही आ रही है। तो अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं ना तो ये ऐसे लगता है जैसे बसमल्ला सूरा के आखिर में आ रही थी, इखलास के आखिर में क्या था, बसमल्ला। ये फलक से पहले फिर महसूस नहीं होती बल्कि इखलास के एंड में महसूस हो रही है, सही। इस वजह से फिर आप इसको नहीं पढ़ सकते, ये तरीका करना गैर जायज है, आप इसको इस तरीके के साथ नहीं पढ़ सकते कि आप सूरतुल इखलास पढ़ के बसमल्ला को मिलाएं और फिर वक्फ करें और फिर नेक्स्ट आया को शुरू करें। ये बात आपको समझ में आ गई, यहां तक अगर कोई सवाल है तो कर लें। हमने देख लिया कि दो सूरज को कैसे आपस में मिलाते हैं। अब हमने चूंकि हमने कहा कि सूरत तौबा इज अ स्पेशल केस, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप दो सूरज को ज्वाइन करें हैं तो आप इसी तरह से इसको करेंगे। Like we do iqlab, will we do ikhfa too in qul? Ikhfa. Yahan pe to ikhfa nahi ho raha. जी सॉरी मुझे समझ नहीं आया कहाँ पे इख्फा इख्फा यहाँ नहीं हो रहा कुल में कोई इख्फा नहीं है और थर्ड टाइप का नाम एक मिनट में देखती हूँ जहां पे कोई रूल अगर अप्लाई हो रहा है तो वो आप अप्लाई करते हैं लेकिन मुझे देखने दीजिए सूरत नसर की एंडिंग यहाँ पे भी इख्फा तो नहीं है इन्नहु काना तवाबा और ये नहीं आप मिला रहे हैं इन्नहु काना तवाबन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब इक़लाब तो हम करेंगे इख्फा नहीं मुझे समझ में आया इख्फा यहाँ पर नहीं हो रहा ना इक़लाब हम कर रहे हैं ओके थर्ड टाइप का जो नाम है वो है वस्लुल बसमला मा सूरा जो हमने बसमला बैन सूरतैन में पढ़ा ना कि बसमला जब दो सूरतों के दरमियान में आ रही है तो फिर कैसे पढ़ेंगे उसकी थर्ड टाइप थी वस्लुल बसमला मा सूरा आप हमें वक्फ करके पढ़ना है आप किसी भी तरह से जो जायज तरीके हैं उनमें से किसी भी तरीके के साथ पढ़ सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे दिल को भला लगे बाजू का ऐसा होता है ये आपकी फीलिंग्स पे भी डिपेंड करता है यानी आप बाजू का डिफरेंटली पढ़ना चाह रहे होते हैं तो उस तरह से आप अपनी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता सन लगता है नहीं अनसर हाँ जी सूरत नसर का एंड और फिर बसमल्ला और फिर सूरत लहब की बिगिनिंग तो इसके बीच में आपका इकलाब होगा सूरत नसर के एंड में इकलाब करके फिर बसमल्ला और फिर आप लहब की बिगिनिंग शुरू करेंगे ओके एक्सप्लेन द फोर्थ वन अगेन जो गैर जायज है दिस इज व्हाट यू मीन वक्फ करके पढ़ना आसान लगता है हाँ जी आप वक्फ करके हमेशा पढ़ सकते हैं मगर चूंकि आप तजवीद के स्टूडेंट हैं सो आपको बाकी तरीकों से वाकफियत जरूर होनी चाहिए नॉट अलाउड का नाम आप कह सकते हैं वसलुल आया माल बसमल्ला ठीक है यानी आया का वसल बसमल्ला के साथ बाकी वजह से इकलाब होगा ना कि इख्फा जी सही अच्छा फोर्थ टाइप जो थी जो कि गैर जायज थी वो क्या थी हाँ जी हम इसको गैर जायज भी कह सकते हैं जो गैर जायज थी वो क्या थी कि लास्ट आया जो सूरह आप पढ़े हैं ना उसकी आखिरी आया को बसमल्ला के साथ मिलाएं और फिर वक्फ करें और फिर आप अगली सूरह शुरू करें इससे ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि बसमल्ला पिछली सूरह के आखिर में आ रही है जबकि ऐसा नहीं है वो तो सूरह के आगाज में है जब आप उसको उसके साथ मिला देते हैं और फिर वक्फ कर लेते हैं सांस लेते हैं तो आपको लगता है जैसे एक टॉपिक खत्म हो गया ना क्योंकि अमूमन वक्फ जो है वो एक सेंटेंस के खत्म होने के बाद किया जाता है तो जब आप ऐसे कर रहे होते हैं तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट देता है जिसको अवॉइड करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं आपके पास ये वाला तरीका जायज नहीं है अगर आपने मिलाना है फिर आप आया बसमल्ला और नेक्स्ट सूरह की आया तीनों मिला के पढ़े और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट आया और बसमल्ला को मिला के वक्फ ना करें सही जी कैन वी कॉल इट गैर जायज टू जी बिल्कुल सूरत अल इखलास अगर आप थ्री टाइम्स पढ़े हैं तो आपको हर दफा बसमल्ला पढ़नी पड़ेगी इफ यू टॉक ड्यूरिंग रिसाइटेशन देन हाउ टू स्टार्ट अगेन अगर आप बात करते हैं तिलावत के दौरान तो आपको फिर उसके बाद जब आप बात खत्म कर लेते हैं तो आपको उसके बाद दोबारा से इस्तआदा से शुरू करना होगा अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपने बात अपनी सूरा को मुकम्मल करके की यानी एक सूरा है उसके खत्म करने के बाद आपने बात की तो आप इस्तआदा और बसमल्ला दोनों पढ़ के शुरू करेंगे फॉर श्योर, क्योंकि अब आप नई सूरह शुरू करें। और अगर आपने आयत को पढ़ के यानी एक आयत खत्म करके बात की है तो फिर आप सिर्फ इस्तआदा करके भी शुरू कर सकते हैं। इन्हीं मैनर्स के साथ आप अपनी रीडिंग को शुरू करेंगे। अगर आप बात करते हैं आप इन्हीं मैनर्स के साथ करेंगे। हाँ, अगर वो बात तिलावत से ही, जैसे उस्ताद शागिर्द बात करें आपस में, स्टूडेंट टीचर हैं वो आपको करेक्ट करे हैं टीचर और वो बात करे हैं, तो आपको हर दफा इस्तआदा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तिलावत से रिलेटेड ही बात हो रही है। लेकिन अगर आप कोई डिफरेंट चीज, डिफरेंट स्टेट में चले गए, डिफरेंट थॉट में चले गए, फिर आपको दोबारा जब वापस आएंगे तो आपको इस्तआदा और बसमल्ला पढ़नी पड़ेगी। बसमल्ला इन द केस कि अगर आप सूरह शुरू करें हैं, वो वाजिब है। अगर आप सूरह नहीं शुरू करें तो ऑप्शनल है, आप पढ़ सकते हैं आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है, दोनों तरीके जायज हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं अपनी स्पेशल सूरह सूरत तौबा की तरफ। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि अगर आप तिलावत का आगाज उससे करते हैं तो इस्तआदा पढ़ सकते हैं, जिसको आप कता भी कर सकते हैं, वसल भी कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर अलनफाल पढ़ते पढ़ते आपने सूरत अलनफाल को खत्म किया और फिर सूरत तौबा को शुरू किया, फिर आपके पास क्या तरीका है दोनों सूरज को मिलाने का। ठीक है, यानी आपने इस्तआदा खत्म किया और बसमल्ला को स्टार्ट किया, सॉरी सूरत तौबा को स्टार्ट किया, कि अगर आपने सूरत अलनफाल जो आप पढ़े थे उसको खत्म किया और सूरत तौबा को शुरू किया, फिर आप इन दो सूरज को आपस में कैसे मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे हर सूरह को हमने देख लिया ना जनरली कि आपके पास चार में तीन जायज हैं, एक गैर जायज है। सूरत तौबा और अलनफाल को मिलाने के कितने मुमकिन तरीके हैं और किस किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, अब हम ये देखते हैं। सिंपल एक तो तरीका वही हो गया कि आप सूरत अलनफाल को पढ़ें, वक्फ करें और आप सूरत तौबा को शुरू करें। इसको हम कहते हैं बिल वक्फ, यानी वक्फ के तरीके के साथ पढ़ना। यानी आप दो सूरज हैं और उनको बीच में वक्फ के तरीके से के साथ पढ़े हैं, और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप दो आयतों के बीच में वक्फ करते हैं। आप वक्फ करते हैं, पॉज लेते हैं, सांस लेते हैं, दो आयतों के बीच में जिस तरह से आप कंटिन्यू करते हैं उसी, बिल्कुल उसी तरह से आप यहां पर दो सूरज के दरमियान में भी वही तरीका अख्तियार करेंगे। कैसे? इदन बिकुल्ली शैइन अलीम, बराअतुम मिन अल्लाहि व रसूलिह। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे आप। जैसे आपने दो आयतों को पढ़ा, आपने बीच में वक्फ किया, सांस लिया, पॉज लिया, और फिर आपने सूरत तौबा को बगैर कुछ कहे, बाज लोग कहते हैं सूरत तौबा और फिर शुरू करते हैं, देयर इज नो नीड फॉर दैट। आप इस्तआजा पढ़े, देयर इज नो नीड फॉर दैट। इस्तआजा किस केस में है? सिर्फ आपकी तिलावत के आगाज में। अब जब आप ऑलरेडी तिलावत कर रहे हैं तो जरूरत नहीं कि आप उसको इस्तआजा को पढ़ें, आप बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे दो आयतें पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं बिल वक्फ, यानी वक्फ के तरीके के साथ। बिल वसल दो तरीके हैं। ठीक है, बिल वक्फ हो गया ये तो। बिल वसल दो तरीके हैं, यानी वसल जब आप करके पढ़ते हैं, मिलाकर जब आप पढ़ते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप दोनों में से किसी भी तरीके के साथ सूरतुल अनफाल को सूरतु तौबा के साथ मिला सकते हैं। नंबर वन, बिल इकलाब। ठीक है, इकलाब। इकलाब क्यों होगा? अब वही दोबारा से आ गया ना, इकलाब। इकलाब इसलिए होगा क्योंकि पहली आयत आलिमुन बमा चान पर एंड हो रही है और दूसरी आयत बराअ बा से शुरू हो रही है। अब चूंकि वही चीज आ गई ना तनमीन के बाद बा, तो अब आप नून को मीम बना के पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमुन बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिह। ठीक है, अब आपने इसको इकलाब करके पढ़ा कि आपने तनवीन को मीम के अंदर चेंज कर दिया। दूसरा जो तरीका आपके पास आ रहा है उसको हम कहते हैं बिसख्त। ये दोनों तरीके तब हैं जब आप बीच में वक्फ नहीं करते। ठीक है, पहला तरीका क्या होगा? इकलाब, के नून को मीम बना के आगे पढ़े। और दूसरा तरीका क्या है? बिसख्त। सख्त क्या होता है? आई होप आप में से बहुत सारे लोग फैमिलियर होंगे। सख्त होता है breathless pause for a short duration. ये दोनों चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है. ब्रेथलेस पॉज यानी जो आपका, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक वक्फ के बारे में ना बताया कि वक्फ के अंदर दो चीजें शामिल हैं. नंबर वन पॉज यानी कटिंग ऑफ साउंड. आप पॉज का क्या मतलब हुआ? कटिंग ऑफ साउंड, आपकी आवाज बंद होगी. नंबर टू ब्रेथ, सांस. और मैंने आपको यह भी मेंशन किया कि अगर दोनों में से एक चीज भी मिसिंग है तो आपका वक्फ प्रॉपर नहीं है. तो अगर आपकी कटिंग ऑफ साउंड है प्लस ब्रेथलेस है, सांस नहीं लिया, वो क्या कहलाता है? सख्त. जैसे अमूमन नमाज में मैंने आपको बताया ना, नमाज में पढ़ते हैं वो सख्त के अंदर शुमार हो जाता है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपकी आवाज थोड़ी कट जाती है मगर आपका सांस नहीं टूटता, तो वो वक्फ में शुमार नहीं है. और वक्फ में यानी फिर आप इस तरह से, उसकी डिफरेंट रूलिंग है, आप वहां पे सख्त नहीं कर सकते क्योंकि वो तरीका आपको मुत्तसिल चेन से नहीं मिलता, वो रिवायत में नहीं है. यहां पर आप सख्त करेंगे. और यहां पर कैसे सख्त करेंगे? यहां पर आप यानी आपने आलीम कहने के बाद आपने पॉज लेना है लेकिन आपने सांस नहीं लेना, और फिर आपने आगे कंटिन्यू करना है. अब आप देखें कि सांस लेना या ना लेना ये रीडर के एहसास से ताल्लुक रखता है, लिसनर की लिसनिंग से नहीं. आप, मैं सांस ले रही हूं या नहीं ले रही, बीच में बहुत जगह मैं पॉज कर रही हूं मगर पता नहीं मैं सांस ले रही हूं या नहीं ले रही, आप उस चीज को कैसे सेंस करेंगे? आप बहुत दफा सांस को सुन नहीं पाते, यानी सांस की आवाज ऐसी है जिसको आप सुन नहीं पाते. तो एक लिसनर कैसे पता लगाएगा कि आपने सख्त किया है या वक्फ किया है? देयर शुड बी अ डिफरेंस. ठीक है, लिसनिंग में भी तो एक डिफरेंस होना चाहिए. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये सारे रूल्स तो तजवीद के बहुत लेटर बने ना, यानी स्कॉलर्स ने जब देखा कि नॉन अरब्स को पढ़ने सीखने में प्रॉब्लम आ रही है तो उस वक्त उन्होंने ये सारे रूल्स डिराइव किए. लेकिन शुरू में तो तजवीद सिर्फ लिसनिंग से ट्रांसमिट हुई ना. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ लिसनिंग से सिखाया, ये रूल्स के नाम सब नहीं सिखाए. ये तो वो सब फैमिलियर थे, वो अपनी लैंग्वेज में अप्लाई करते थे और जरूरत भी नहीं थी कि उनको मखारिज और ये सब चीजें सिखाई जाती क्योंकि वो जबान से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे. उनके जमाने में और कुछ था ही नहीं सवाए जबान के, यानी जबान एक उरूज के ऊपर थी. तो हमें अब जब ये सब रूल्स सिखाए जाते हैं तो फिर हमें बताया जाता है कि हमने ये क्या करना है. तो इसमें यह है कि वक्फ में और सख्त में कोई ऐसा डिफरेंस होना चाहिए जिससे लिसनर ये आइडिया लगा सके कि आपने वक्फ किया है या सख्त किया है. तो ये है, इसका डिफरेंस क्या है, यानी कैसे आपको पता चले कि वक्फ है या सख्त है? तो इस चीज का पता आपको इस बात से लगता है जो ड्यूरेशन होता है ना सख्त का, वो बहुत छोटा होता है. इतना ड्यूरेशन होता है जिसमें सांस का लेना मुमकिन नहीं होता. जब एक लिसनर दो आयतों को सुनता है तो उसको फौरन आइडिया हो जाता है कि ड्यूरेशन इतना छोटा था जिसके अंदर ये पॉसिबल ही नहीं था कि आप सांस लेते. तो उस ड्यूरेशन से लिसनर ये आइडिया लगाता है कि आपने सख्त किया, आपने वक्फ नहीं किया. बहुत दफा जैसे क्लास में सुनते हुए ना, यानी आप जब स्टूडेंट की लिसनिंग कर और अगर अब हम कता, क्योंकि इसमें वक्फ के साथ भी तो पढ़ा जा सकता है ना, अगर हम वक्फ के साथ पढ़ें तो वो कैसा होगा? इन्ना अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिह. ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे. जी बात समझ में आ गई आपको? अल्हम्दुलिल्लाह. अब आप लोग अपने अपने हैंड रेस कर लीजिए और मैं थोड़ा सा ना आपसे थोड़ी लिस्टिंग भी करा लूंगी और मैं सिर्फ आपसे ये सुनूंगी कि आप डिफरेंट सूरज को, जैसे आप इस्तआदा से अगर स्टार्ट ले रहे हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं, मतलब कोई भी तरीका आपसे कहूंगी पढ़ने का, और आप मुझे पढ़ के दिखाइएगा। चलो जी, बाकी लोग भी हाथ उठा लीजिए प्लीज, उससे मुझे थोड़ा आपकी रीडिंग का भी आइडिया हो जाएगा। आप जो लोग रजिस्टर्ड हैं प्लीज वो हाथ उठाइए, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों का रीडिंग का क्या लेवल है ना। इंशाल्लाह मैं माइक छोड़ती हूँ। फर्स्ट सिस्टर, आप मुझे सूरतुल कौरिया स्टार्ट करके दिखाएं। जब मैं कहूंगी स्टार्ट, तो आपने फिर स्टार्टिंग वाले तरीके लेने हैं, और जब मैं कहूंगी कि दो सूरज को मिलाना है, तो फिर आपने मिलाने वाले तरीके लेने हैं। ठीक है, सूरतुल कौरिया को शुरू कीजिए वसलुल कुल से।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है जी? तो मिलाकर पढ़ना है बिस्मिल्लाह और सुरा को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमिल्कारिया मल्कारिया وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
जी, जज़ाकअल्लाहु खैरा, बारिकअल्लाहु फीकुम। जी, जब हम कहते हैं ना वसलुल कुल, थोड़ी आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी, मैं बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सुन सकी। जब हम कहते हैं वसलुल कुल, तो आपने ना इस्तआदा से शुरू करना है, क्योंकि वसलुल कुल में आपके पास तीन चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जिसका आप वसल करेंगे। इस्तआदा, बसमल्ला, और फिर आया नंबर वन। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة। ठीक है जी, दैट वॉज गुड माशाल्लाह। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सिस्टर, आप मुझे ना सूरत तकासुर स्टार्ट करके दिखाइए। वसलुल बसमला मा सूरा। ठीक है, आपने क्या क्या शुरू करना है? सूरत तकासुर जो नेक्स्ट सूरा है वो आपने शुरू करनी है, और आपने कैसे शुरू करनी है? वसलुल बसमला मा सूरा से शुरू करनी है। ठीक है, मैं माइक छोड़ती हूँ, और आपने सिर्फ एक आयत पढ़नी है, यानी सिर्फ एक आयत तक आपने उसको, सिर्फ पढ़ने का तरीका मुझे बताना है, और फिर आपने माइक छोड़ देना है। जज़ाकअल्लाह खैरा।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर,
जी जज़ाकअल्लाहु खैरा, माशाल्लाह, इट्स गुड। लेकिन आपने जो तरीका पढ़ा ना, वो था वसलुल इस्तआदा माल बसमल्ला। आपने इस्तआदा का वसल किया है बसमल्ला से। मेरी डिमांड थी वसलुल बसमला मासूरा। ठीक ठीक है, वस्तुल बसमला मा सूरा। मैं एक सिस्टर को चांस देती हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह इस तरीके को पढ़ के दिखा दूंगी। नेक्स्ट सिस्टर, आप प्लीज ट्राई कीजिए वस्तुल बसमला मा सूरा।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نار حامية، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر.
जी, जजाक अल्लाह खैरा। दिस इज व्हाट आई वांट। एक्चुअली आपने जी आपने ना दो सूरस का पढ़ दिया, पर दैट्स ओके। उसमें जो मैं चाह रही थी वो ये कि मैं सिर्फ बसमला का वसल देखना चाह रही थी नेक्स्ट आया के साथ। जब हम चूंकि मैंने कहा ना आगाज करें, फिर आपने इस्तआजा से पढ़ना था, ठीक है? इस्तआजा प्लस बसमला और सूरा। इसमें एक पॉइंट आप लिख लीजिए, ये जो वर्ड है ना अल्हाकुम, ये हेल्पर हमजा से नहीं स्टार्ट हो रहा। अलहाकुम हेल्पर हमजा से स्टार्ट नहीं हो रहा। ये आप जब पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे? अऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलहाकुमुत तकासुर। यूज द हमजा। क्यों? इसलिए कि जो हेल्पर हमजा होता है ना, अगर वो अल वर्ड से पहले आता है तो वो अल तारीफ का होता है। लाइक अलहमदु अल लतीफु, यानी एक वर्ड होगा और उससे पहले अल आपको इदाफन मिला होगा। यानी शम्स अशम्सु, हदीद अल हदीदु। ये जो वर्ड है ये लहक, लाम इज द पार्ट ऑफ द रूट, तो ये एडिशनल नहीं है, ये वो अल वाला अल नहीं है। इस हेल्पर हमजा को पहचानने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मदद, तो आप इस हेल्पर हमजा को पहचान सकते हैं, उसके ऊपर स्वाद लगा होता है। जी ये हमजतुल असल है, बिल्कुल खता हमजा जो होता है ना वो है, ये हमजतुल वसल नहीं है, इसलिए आप इसको ड्रॉप नहीं करते, ठीक है? ओके जी, नेक्स्ट सिस्टर आप करिए, आप मुझे पढ़ के दिखाइए। सूरतुत तकासुर, नहीं सॉरी, सूरतुल आदियात। आदियात ध्यान से सुने, सूरतुल आदियात को मिलाना है सूरतुल कारिया से, ठीक है? आदियात को मिलाना है अल कारिया से। अब जो मैंने मिलाने की बात की ना, अब आप लास्ट आया से शुरू करेंगे, ठीक है? लास्ट आया, आपने सिर्फ लास्ट आया से शुरू करना है, पूरी सूरा नहीं पढ़नी, लास्ट आया से शुरू करना है और नेक्स्ट सूरा की सिर्फ आया वन पढ़नी है और आपने वसलुल कुल करना है, ठीक है? मिला के वसल और कुल करके पढ़ना है।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية.
جزاك الله خير.
आमीन वयाकुम। जी दैट वाज गुड, तरीका आपका बिल्कुल ठीक था, सिर्फ अल-क़ारिया आइन को स्ट्रांग रखना है, ठीक है? आइन आपका मिस नहीं होना चाहिए। जी नेक्स्ट सिस्टर आप पढ़िए, अल-अनफाल और अत-तौबा को मिलाकर पढ़ें और सख्त के जरिए। बिस सख्त आपने पढ़ना है, ठीक है। अलनफाल और तौबा की ज्वाइनिंग करनी है और सख्त के साथ, और अलनफाल की पूरी आया को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन अल्लाह से बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन पढ़ें और तौबा को इंशाल्लाह सख्त के साथ पढ़ के दिखाएं।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله. السلام عليكم.
जी, दैट वाज गुड माशाल्लाह। सिर्फ कटिंग ऑफ साउंड का जो ड्यूरेशन है ना, वो प्रोमिनेंट, कटिंग ऑफ साउंड प्रोमिनेंट होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन हमने नहीं बढ़ाना, मगर ड्यूरेशन को इतना कम नहीं करना कि वो बिल्कुल लगे कि आपने सांस, बिल्कुल आपने साउंड को ही नहीं कट किया, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। मुझे आपका बीच में ना जो कटिंग ऑफ साउंड है वो नहीं लगी। إن الله بكل شيء عليم براءه، ठीक है। यानी आप उसको काट दें, आवाज आपकी थोड़ी देर के लिए, फॉर अ सेकेंड और टू, आपका बहुत कम देर के लिए आवाज आपकी बंद हो जाएगी, फिर आपने براءه से स्टार्ट करना है, ठीक है। इंशाल्लाह जी, हम आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बिल्कुल पॉज, आपने पॉज लेना है। अगर आप पॉज नहीं ले रहे और इस डर से कि आपका ड्यूरेशन कहीं ज्यादा ना हो जाए, तो ये भी दुरुस्त नहीं रहेगा। तो आपने दोनों चीजों को मॉडरेट करके कि पॉज भी लें और ड्यूरेशन भी ज्यादा ना हो, इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस में रखें। नेक्स्ट वीक हम इसकी थोड़ी और ड्रिल करेंगे इंशाल्लाह। बारकुमुल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि आज क्लास हो पाएगी, मगर अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने इस चीज को मुमकिन बनाया। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.